थे स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में पाया है। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मीका नबी की पुस्तक के अध्ययन के आरंभ से लेकर अब तक हमने परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखा है जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध हुए हैं। आज इस पुस्तक का हमारे लिए अंतिम अध्ययन होगा, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है कि हम दूर दराज पर रहकर भी एक साथ आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं। इस घड़ी जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक से बोलने और बातचीत करने पाए, उनकी जरूरतों को उनके सामने लाने पाए। पिता परमेश्वर, जिस रीति से आपने हमें इस पुस्तक के अध्ययन के आरंभ में सहायता प्रदान किया, आज भी आप हमारे साथ में हो, आज भी अपने वचन के द्वारा हम सभी श्रोता भाई बहनों से बोले और बातचीत करें, इस वचन पर अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, मीका कहता है, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, वह मुझे पाप का दंड देकर उज्याले में ले आएगा। उस समय परमेश्वर का ठट्ठा करने वाले लज्जित होंगे, इसराइल अपने निवासियों के कुकर्मों के कारण उजाड़ हो जाएगा, परंतु प्रभु के राज में उनकी भेड़ बकरियां पहले के समान अति उत्तम चारागाहों में चरा करेंगी। उस समय सब जातियां परमेश्वर से डरने लगेंगी और सब जातियां परमेश्वर के पास उसके मार्ग खोजने आएंगी, और तब सियोन से व्यवस्था और यरूशलेम से परमेश्वर का वचन निकलेगा। लेकिन हमने पिछले अध्ययन में देखा कि यशाया अपनी पुस्तक 44 अध्याय में हमें बता रहे थे, जहां पर हमने इस प्रकार से देखा था, यशाया 44 उसके 16 और 17 पद में, उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है, वह मांस भूनकर तृप्त होता है, फिर ताप कर कहता है, आह मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है, और उसके एक बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत बनाता है, तब वह उसके सामने दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। और पद 21 में यशाया कहता है, हे याकूब, हे इसराइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इसराइल, तू मेरा दास है, मैं तुमको ना भूलूंगा। मेरे मित्रों, यशाया इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि परमेश्वर ने हमें रचा है और हमारा रचयिता परमेश्वर ही है। हम अपने से अपने आप को नहीं बना सकते और न ही हम अपने लिए ईश्वर बना सकते हैं, जैसा कि इस संसार में लोग कर रहे हैं, अपने लिए एक ईश्वर बनाकर उसकी आराधना स्वयं करते हैं। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे मीका नबी की पुस्तक 19 और 20 पद। मीका 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, जो इस अध्याय का और इस पुस्तक का अंतिम पद है। लिखा है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा, तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। मेरे प्रियो, आप में से कुछ लोग कहेंगे, हम तो मूर्तियों की उपासना नहीं करते हैं। मीका इसराइल की मूर्ति पूजा का उल्लेख करता है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि हम भी दोषी हैं। लालच करना भी एक मूर्ति पूजा है। सिर्फ किसी मूरत के सामने दंडवत करना ही नहीं, परंतु लालच करना भी एक प्रकार का मूर्ति पूजा है। आप जिस संसार में रहते हैं, जिस सांसारिक बात के पीछे में हो लेते हैं, वही आपका देवता है। आपका समय और आपका पैसा जिस बात में लगता है, वही आपका देवता है। परमेश्वर कटाक्ष करके कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 46 अध्याय उसके 5 पद में, तुम किससे मेरी उपमा दोगे, अर्थात तुलना करोगे, और मुझे किसके समान बताओगे, किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? वह सृजनहार है, उसका रूप नहीं है। यशाया 46 उसके 6 और 7 पद में वह कहता है, जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तौलते हैं, तो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करके दंडवत भी करते हैं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या आपका धर्म आपको लिए चल रहा है? मेरे कहने का तात्पर्य है, आपकी धार्मिकता आपको लिए चल रहा है या आप अपने धार्मिकता को लिए चल रहे हैं? अनेक जन मुझसे कहते हैं, ओह, मुझे मसीही कार्यकलाप उबाऊ लगते हैं, वे बहुत कठिन हैं, कठोर हैं। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है, तो मेरी राय यह है कि आप उसे त्याग दें, संडे स्कूल पढ़ाना छोड़ दें, गायन मंडली में गाना गाना भी छोड़ दें, कलीसिया का कोई भी पद आप ना संभालें। यदि आपको किसी कलीसियाई काम में बोझ का काम लगता है या बोझ का आभास होता है, तो वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वह सेवा दें। वह नहीं चाहता, जी हां, वह नहीं चाहता कि आप उसे उठाकर चलें। वह आपको उठाकर चलना चाहता है। मुझे किसी ने कहा, अब आप काफी आयु में बढ़ रहे हैं और आपने 40 वर्ष अपनी उम्र बिता लिए हैं और आप सेवा भी कर चुके हैं, रेडियो पर भी प्रचार आपने किया है, अब आप सेवानिवृत्त क्यों नहीं हो जाते? मेरे प्रियो, मैं आइसक्रीम खाने की अपेक्षा परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे लंबे समय से उठाकर चल रहा है, वह मेरी सहायता कर रहा है, यद्यपि मैं उसके लिए बहुत भारी हो चुका हूं, फिर भी वह मुझसे प्रेम करता है और वह मेरी सहायता करता है। अतः परमेश्वर बेजोड़ है, वह सृजनहार है, वह हमें लेकर के चलता है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, आदि में अर्थात आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इससे आगे जाना उसकी निंदा करना है। भजनकार कहता है 90:2 में, आदि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, वह सृजनहार है, सृष्टि करता है। अब मेरे मित्रों, दूसरी बात हम देखते हैं, बाइबल का परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। मीका नबी की पुस्तक वरन बाइबल की 66 पुस्तकों में से हर एक पुस्तक में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर पवित्र और धर्मी प्रभु है। अन्य सब देवता छोटे हैं। यूनानियों का देवता मनुष्य का स्वरूप ही था। उन्होंने क्या किया? वे बदला लेने वाले देवता थे और यही कारण था कि बहुत सारी लड़ाइयां होती थी। यह परमेश्वर की कैसी निंदा है! क्या आप परमेश्वर को कोई रूप दे सकते हैं, उसका आकार दे सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि परमेश्वर को आपने नहीं देखा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। जी हां, उसका कोई रूप नहीं होता। धर्म शास्त्र में हम कितनी बार पवित्रता के सौंदर्य को पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। आपका परमेश्वर सुंदर है। भजन संहिता 50:21 में वह कहता है, तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे समान नहीं हूं। तू बुरे काम करता है, मैं पवित्र और धर्मी हूं। तब हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मेरे प्रियो, इस वचन पर ध्यान दीजिए कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार एक समान नहीं है, हमारी गति और परमेश्वर की गति भी एक सी नहीं है। परंतु कई बार हम अपने विचारों को परमेश्वर का विचार समझ बैठते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर के साथ तुलना करते हैं। आज दुखद बात तो यही है, जब हम संसार की ओर दृष्टि करते हैं तो ऐसे लोगों की भरमार पड़ी हुई है। आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है? क्या आप ये सोचते हैं कि आपके विचार परमेश्वर के विचार हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप देखें कि क्या आप पवित्र और धर्मी हैं। परमेश्वर पवित्र है और कहता है कि वह पाप से घृणा करता है, वह पाप से क्रोधित हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य दंड पाता है। उसके दंड से बचने का कोई मार्ग नहीं है। दंड तो आपको अवश्य ही मिलेगा। भविष्य में न्याय का दिन आएगा और जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है वे अवश्य ही दंड पाएंगे, परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, रोमियो के पत्र 8:1 में लिखा है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि उनके पाप क्षमा किए गए हैं। मेरे मित्रों, हमें यह बोध होना आवश्यक है कि हम पापी हैं और हमें मन फिराकर परमेश्वर के पास आना आवश्यक है। परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने का अर्थ यही है, आप अपने कामों पर गर्व करके परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। आपको उसके पास आकर कहना है, स्वीकार करना है कि मैं पापी हूं, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। जी हां, आपको सिर्फ यही करना है। आपको यह जान लेना है कि आप अपने कर्मों से स्वर्ग नहीं जाएंगे। अतः आपको उसका उद्धार ग्रहण करना है। 11वीं शताब्दी के महान विचारक अनसेलम ने कहा, मैं पाप लेकर स्वर्ग जाने की अपेक्षा निष्पाप नरक जाना चाहता हूं। यह एक कठोर बात है, परंतु आज की जो बाइबल शिक्षाएं होती हैं थियोलॉजी की अपेक्षा, हमें ऐसी कठोर बातें सुनने की आवश्यकता है। जी हां, ऐसी बातें सुनकर आप दहल जाएंगे और आपके जीवन में परिवर्तन का आना भी अनिवार्य होगा। तीसरी बात हम देखते हैं, बाइबल का परमेश्वर पाप क्षमा करता है। ध्यान दीजिए, बाइबल का परमेश्वर पाप क्षमा करता है और दया दिखाने में प्रसन्न होता है। पद 18 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। वह करुणा से प्रीति रखता है, यह उसकी विशेषता है, अतः उसके समान और कोई नहीं है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि उसके समान और कोई नहीं है। सिर्फ वही आपको क्षमा दे सकता है, आपके पापों को मिटा सकता है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तब हम आगे देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसके 18 और 19 पद में आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को पढ़ सकते हैं। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। परमेश्वर के कहने का अर्थ था कि वह मूसा के कारण या इसराइली की अगुवाई करने वाले के कारण नहीं, परंतु केवल इसलिए कि वह अनुग्रहकारी है और दयावान है, वह ऐसा करेगा। वह कहता है कि वह सबके लिए ऐसा करेगा, न केवल एक जाति, एक कौम, एक धर्म, एक भाषा नहीं, परंतु सबके लिए। आपको बस उसके पास आकर उससे दया मांगना है। आज तक आपने प्रभु यीशु से कुछ भी नहीं मांगा है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आज की रात प्रभु यीशु से आप मांगे, वह आपसे बातचीत करेंगे, वह आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि वह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हां, इसलिए आपको बस उसके पास आकर उससे दया मांगना है। मेरे मित्रों, वह ऐसा भला है और उसके तुल्य और कोई भी नहीं है। और फिर निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 5-7 पद में लिखा है, यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी भी रीति से या किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। जी हां, वह दोषी को निर्दोष नहीं कहेगा। आरंभ से विनाश तक गलत गलत ही है, इसे सही नहीं कहा जा सकता। किसी नाटक के ये शब्द हैं, सब स्वर्गदूत अतिरिक्त परिश्रम करके भी इसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं ला सकते, परंतु प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की पवित्रता संतुष्ट हो गई और पापियों के पाप क्षमा हुए। धर्मशास्त्र में परमेश्वर क्षमा के अनेक रूपक हमें दिखाते हैं। मैं कुछ यहां उल्लेख करना चाहता हूं। उसकी क्षमा ऋण के समान है, उधार के समान है, जिसे उतारा जा चुका है। यशाया नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं, जी हां, और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। परमेश्वर के लेखे में मैं ऋणी हूं, क्योंकि पौलुस भी कहता है रोमियो के पत्र 6 उसके 23 पद में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 22 पद में वह कहता है, आदम में सब मरते हैं। और यरमिया की पुस्तक 3 अध्याय उसके 22 पद में परमेश्वर की क्षमा को रोगहर कहा गया है, कहता है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। यशाया 61 उसके 1 में उसकी प्रतिज्ञा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। और अंत में परमेश्वर की क्षमा को प्रदूषण निवारक कहा गया है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। और तब पहला योहना की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्षमा कैसे करता है? परमेश्वर के तुल्य क्षमादान में अन्य कोई नहीं है। आपने गलती से मेरे पांव पर पांव रख दिया और मुझसे कहा, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, परंतु मन में आपको कोसता हूं। एक और उदाहरण है, मुझे किसी ने पत्र लिखकर पीठ पीछे मेरी बुराई करने की क्षमा मांगी। मैंने उससे लिखा, मुझसे नहीं, अन्य सबसे आप क्षमा मांगे जिनकी आपने बुराई की है और बुराई करते हैं। परमेश्वर से संबंध सीधे करें। मनुष्य का क्षमादान आसान है, परमेश्वर जब तक क्षमा नहीं करता, जब तक कि पापी का हरण ना हो। और प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप हर लिए। हमने पाप के दासत्व में परमेश्वर की पवित्रता को अशुद्ध किया, हम उसके ऋणी हो गए। हमारे पाप का रोग स्वर्ग में परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, परंतु प्रभु यीशु ने हमारा ऋण चुका दिया है। जी हां, हमें क्षमा किया है, वह हमें शुद्ध करके परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहराता है कि हम स्वर्ग जाएं। लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता है, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। कैसा महान परमेश्वर है वह! वह एक दिन इसराइल का पुनरुद्वार करेगा, इसलिए नहीं कि वह अच्छा है, परंतु इसलिए कि परमेश्वर महान है। इसी प्रकार मेरे मित्रों, मैं स्वर्ग जाऊंगा तो इसलिए नहीं कि मैं अच्छा और धर्मी हूं, परंतु इसलिए कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा और मेरे अपराध को उसने क्षमा किए हैं। मेरे परमेश्वर के समान दूसरा परमेश्वर नहीं है। क्या आपके अपराध क्षमा हुए हैं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? मेरे मित्रों, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज संसार में लोग भटक रहे हैं उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, और अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन यहां पर बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि यीशु ही हमें मोक्ष दे सकते हैं। आप मन में किसी प्रकार का गलत विचार ना लाते हुए प्रभु यीशु के पास एक बार आकर के देखें, क्योंकि वही आपको मोक्ष देगा। यदि आप इसकी खोज में हैं, तो प्रभु यीशु आपके इंतजार में है। वह आपको अवश्य मदद करेगा। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसी के साथ मीका नबी की पुस्तक का अध्ययन भी समाप्त होता है। अब हम अगले अध्ययन में एक नए पुस्तक में प्रवेश करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप उसमें भी अवश्य भाग लें और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएं। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले। रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले। नादिम है अपने
गुनाहों पे यीशु गर्दन शर्म से झुकी है।